आगे जी रुकू नंबर 18, 148 से 151, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का खूबसूरत बाहमी ताल्लुक, यानी दो भाई जब एक ही कॉज पे लग जाते हैं तो कितना प्यारा ताल्लुक बनता है। आइए देखते हैं। वत्तखज़ कौम मूसा मिन बादिही मिन खुलीजिहिम एजला, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने इनके बाद अपने जेवरों का एक बछड़ा माबूद ठहरा लिया जो कि कालिब था, जिसमें कवास थी। क्या उन्होंने ये ना देखा कि वो इनसे बात नहीं करता और ना कोई राह बतलाता था? इसको उन्होंने माबूद करार दिया और बड़ी बेइंसाफी का काम किया। क्या वैसे बात है कि बंदा पूरी दुनिया को तिगनी का नाच नचा ले, पैसे पैसे पे बात करे, लेकिन एक पत्थर के बुत के आगे बैठ जाए, कितनी ना समझी की बात है। शिर्क इंसान से सोच समझ का जो एक बंदे के अंदर अल्लाह ने रखा है ना मामला, वो छीन लेता है। मूसा अलैहिस्सलाम की और इन सब की इन बातों को सुनकर हमें भी ये दुआ करनी है कि अल्लाह जो ना समझियों में, जो सिर्फ इसलिए कि बाप दादा के वक्त से बुतों के आगे बैठे, एक दफा तो उनकी जिंदगी में कोई ऐसा सबील और रुश्द पे बुलाने वाला साथी मिल जाए जो हाथ पकड़ के उनको प्यार से ले आए। और याद रखे, तौहीद बंदे की फितरत में गुंदी हुई है। क्या हुआ? और जब नादिम हुए और मालूम हुआ कि वाकई वो लोग गुमराही में पड़ गए, तो कहने लगे, अगर हमारा रब हम पर रहम ना करे और हमारा गुनाह माफ ना करे तो हम बिल्कुल गए गुजरे हो जाएंगे। यानी बंदे के अंदर कुछ ना कुछ तो अपना मुहासबा करने का अल्लाह ताला ने एक नुक्ता रखा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम का सोचिए, वहां गए थे पढ़ने बढ़ाने, पीछे से देखे करतूत क्या हुआ है कि पीछे वाली कौम ने बुत बना लिया। अब क्या तकलीफ हुई होगी मूसा को, गुस्से में गए। सुनिए, और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ वापस आए, गुस्से और रंज में भरे हुए, नोट कर लें, खिलाफे शरा काम को देख कर गुस्सा आना ईमान की अलामत है। ये नहीं कहते इट्स ओके, बच्चियां हैं मैं क्या करूं, बीवी मेरी सुनती नहीं। वो शौहर जो अपनी बीवी में गलत चीज देखे किसी भी एंगल में और उसको गुस्सा ना आए, वो बाप जिसको अपनी बेटी के हाल हुलिये से लेके बाकी कामों पे और बेटों को और इस तरह सो ऑन गुस्सा नहीं आता, उनको ईमान की गोलियां देने की जरूरत है, उनका ईमान बहुत कमजोर है। क्या कहा? कि तुमने मेरे बात मेरी बड़ी बुरी जानशीनी की, क्या अपने रब के हुक्म से पहले ही तुमने जल्दबाजी कर ली और जल्दी से तख्तियां एक तरफ रखी और अपने भाई का सर पकड़कर इनको अपनी तरफ घसीटने लगे। रिफ्लेक्स एक्शन था। शिर्क देखकर ईमान वाले को ऐसी रिजेंटमेंट होती है जैसे गंदगी का कोई ढेर देखकर किसी भी नफीस और सफाई पसंद इंसान को हो। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी माँ जाए, देखिए माँ को बीच में ले आए, सेंटिमेंटल रिलेशन, इमोशनल टच है इसमें कि ये भी इंसान थे नबी। इन लोगों ने मुझको बेहकीकत समझा, यानी वो मेरी बात ही नहीं सुनते, और करीब था कि मुझको कत्ल कर डाले, तो तू मुझ पर दुश्मनों को मत हंसाओ। क्या पता चला, जब भाई भाई से लड़ता है ना तो दुश्मन हंसते हैं, जब मुसलमान मुसलमान से लड़ता है ना तो गैर मुस्लिम हंसते हैं। और मुझको इन जालिमों के जेल में मत शुमार करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, मेरी खता माफ़ फरमा और मेरे भाई की भी, और इन दोनों को अपनी रहमत में दाखिल फरमा, और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। दो आप भी मांग लीजिए अपने भाइयों बहनों को जहन में लेकर, रब्बे फिर ली वली अखी वद खिलना फी रहमतिक वअंता अरहमुर राहिमीन। अल्लाह हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे सारे प्यारों को भी माफ कर दे, हमें भी माफ कर दे, उन सब पे रहमतें कर दे, हम पे भी कर दे, और तू रहम करने वाला है। तो ये दुआएं बीच में जो मांगता है इंसान, ये उसका दिल खोलती हैं। तो क्या पता चला इस रुकू से कि दीन के खिलाफ काम होता देखकर गुस्सा आना ईमान की निशानी है। मूसा अलैहिस्सलाम की तरह ईमान वाले को अल्लाह तला की हक तलफी देख कर गुस्सा आता है, ना कि जाती हक तलफियों पर। देखिए, किसी ने कहा कि वी आर वेरी गुड लॉयर्स ऑफ आवर सेल्फ, यानी हम अपने हक में बोलने वाले बहुत अच्छे वकील होते हैं, एंड वेरी गुड जज अबाउट द अदर्स मिस्टेक। हम अपनी हक तलफी पे चीख उठते हैं, मेरा हक मारा, मुझे ये कहा, मेरे बारे में ये सोचा, और लोग अल्लाह के बारे में कुछ भी कहते रहे, हमारे माथे पे बल भी नहीं आता। फिर यहाँ मूसा के गुस्से आने से ज्यादा गुस्से के जाने की बात हाईलाइट की गई, तो क्या कहा? फलम्मा सकता, जब मूसा का गुस्सा चला गया तो फिर तख्तियां उठाई और काम पे चल पड़े, यानी इमोशनल टॉर्चर से गुजरे लेकिन काम नहीं छोड़ा, और गुस्से में तबलीग नहीं की, यहाँ लिखिए, और आप सब तो मासूम से भोले भाले लोग हैं, शायद मेरी आवाज़ किसी ऐसे बंदे तक पहुँच जाए जो तबलीग करते हो मेरी तरह, किसी को समझाते हो, तो अल्लाह के लिए अपनी तबलीग में से गुस्से को निकाल दीजिए। सह में बैठे होते हैं बेचारे लोग, काटो तो बदन में खून नहीं, और आप चिल्ला रहे हैं, गुस्सा करें, मिम्बरों से इतनी ऊंची आवाज है, बच्चे अंदर कह रहे मामा मौलवी साहब को गुस्सा क्यों आ रहा है, रुक जाओ खड़े हो जाओ, क्यों मैंने क्या कर दिया, बिजली के तार को पाँव लगा दिया, नहीं वो मौलवी साहब के मसल्ले पे बच्चे का पाँव आ गया। लेकिन गुस्से में तबलीग नहीं हो सकती। मैं एक दिन गुस्से से आपसे बात करूँ ना, तो कल आते हुए आप भी 10 दफा सोचेंगे कि ये तो बड़ी गुस्से वाली खातून लगती है हमें। तो फिर आप डॉक्टर्स के पास जाएं तो हेलो हाय स्वीटी स्वीट हार्ट करके बुलाएं, और दीनदार आपको ऐसे बुलाएं जैसे कोई कर्जा लेने देने वाला आ गया। तो तबलीग में नरमी दिलों में लेके जाती है। फिर जहाँ जो मैदान है, छुरियाँ मुख्तलिफ, आपके घर में फ्रूट काटने की एक छुरी है, गोश्त काटने की है, कभी फ्रूट काटने वाली छुरी से गोश्त काटेंगे ना तो आपका अपना हाथ कटेगा, गोश्त नहीं कटेगा। और आप उसका ऑपोजिट कर लीजिए, जरा गोश्त काटने वाली छुरी के साथ फ्रूट काटिए तो बेचारे अंगूर और वो सारी स्ट्रॉबेरीज रो पड़ेंगी कि हमने क्या कसूर किया, हमें क्यों इतनी तेज छुरी से काट रहे हो। फेथ इन एक्शन, अपने और अपने अकारिब के लिए बख्शिश की दुआ करनी है। सफर पर जाएं तो पीछे अपना नाइफ छोड़ कर जाएं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि किसने वापस आना है और नहीं। रुकू नंबर 19, 152 से 157, अपने अपने बछड़ों को पहचानिए। ये बछड़े क्या हैं? ये जो दिलों में बैठे हुए हैं, और हमें हक समझ आने के बावजूद भी हम हक के तकाजे पूरे कर नहीं पाते। इन नल्लजीन तखजुल इजल सयनालुहुम गदबुम मिर रब्बिहिम, बेशक जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की, इन पर बहुत जल्द इनके रब की तरफ से गजब और जिल्लत इस दुनिया की जिंदगी में ही पड़ेगी। और हम झूठी तोहमत लगाने वालों को ऐसी सजा दिया करते हैं, और जिन लोगों ने गुनाह के काम किए फिर इसके बाद तौबा कर लें और ईमान ले आए, तो तुम्हारा रब इस तौबा के बाद गुनाह माफ करने वाला रहमत करने वाला है। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा चला गया तो इन तख्तियों को उठा लिया, और इनके मजामीन में इन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे हिदायत और रहमत थी। और मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 आदमी अपनी कौम में से हमारे वक्ते मुअय्यन के लिए मुंतखब किए, बस जब इनको जलजले ने आ पकड़ा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे कि मेरे परवरदिगार, अगर तुझको ये मंजूर होता तो इससे कबल ही इनको और मुझको हलाक कर देता, क्या तू हम में से चंद बेवकूफों की हरकत पर सबको हलाक करेगा? ये वाकया महज तेरी तरफ से इम्तिहान है, ऐसे इम्तिहानात से जिसको तू चाहे गुमराही में डाल दे और जिसको चाहे हिदायत पर कायम रखे, तू ही हमारा कारसाज है, बस हम पर मगफरत और रहमत फरमा, और तू सब माफी देने वालों से अच्छा है। देखिए कितनी लजाजत का अंदाज है। यहाँ देखिए एक और खूबसूरत सी दुआ मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान से हम भी मांग लेते हैं। अंत वलीयुना फ़ग़फ़िर लना वरहमना वअंत ख़ैरुल ग़ाफ़िरीन, आमीन कीजिए। कोई अपना ऐसा गुनाह याद करे जो भूल ही नहीं रहा, और फिर ये दुआ मांगिए। और हम लोगों के नाम दुनिया में भी नेक खाली लिख दे, और आखरत में भी हम तेरी तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अपना अजाब इसी पर वाक़े करता हूँ जिस पर चाहता हूँ, और मेरी रहमत तमाम अशिया पर मुहीत है, तो वो रहमत इन लोगों के नाम जरूर लिखूंगा जो अल्लाह से डरते हैं। इस नायत का नंबर लिख लीजिए बस, फिर बाद में इसके अंदर से एक बात निकलेगी। 156 अल आरा, क्या पैगाम है? तो वो रहमत इन लोगों के नाम जरूर लिखूंगा जो अल्लाह से डरते हैं और ज़कात देते हैं और हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। जो लोग ऐसे रसूल नबी का इत्तबा करते हैं जो उम्मीद है, जिनको वो लोग अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो इनको नेक बातों का हुक्म फरमाते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं, और पाकीज़ा चीज़ों को हलाल बताते हैं और गंदी चीज़ों को इन पर हराम फरमाते हैं, और इन लोगों पर जो बोझ और तौक थे इनको दूर करते हैं। बस जो लोग इस नबी पर ईमान लाते हैं, इनकी हिमायत करते हैं और इनकी मदद करते हैं और इस नूर का इत्तबा करते हैं जो इनके साथ भेजा गया, क्या मुराद है इससे? कुरान का नूर, ऐसे लोग पूरी फलाह पाने वाले हैं। हम अक्सर एक जुमला बोलते हैं जी अल्लाह रहम करेगा, तो ये जो मैंने बीच में रोका था ना 154, ये आयत उसका जवाब है कि अल्लाह की रहमत उन पे आती है जो ये तीन चार काम करते हैं जिसका इधर तस्करा है। ईमान से मुतल्लिक 3 आयात इस रुकू में, 153 आराफ, इसका पैगाम क्या है? कि तौबा से हर गुनाह मुआफ हो जाता है। डोंट डिले योर तौबा, और 156 आराफ, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, इसको पाने के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे, और 157 आराफ, सुन्नतों को अपना कर अपनी ज़िंदगी को आसान करें। आज के हमारे इस मौजू को कि अल्लाह के नबी सल्लम के हकूक़ हैं, मुझे उम्मीद है कि पिछले पारे के साथ जो दो ईमान की शाहें थी उसकी रोशनी में आप समझेंगे हकूक़ रहमतुल आलमीन। आज हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी नेकियां तो करते हैं मगर गुनाह नहीं छोड़ते, उसकी वजह यह कि अल्लाह के नबी का वो हक़ नहीं पहचान पा रहे। तो आपकी मेरे लिए अमल का नुक्ता क्या है, ज़िंदगी में अपने बछड़े को पहचानना है, एहसास हो जाने पर तौबा में जल्दी करनी है। और ये रुकू इसमें जो आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक थी, शायद पूरे कुरान पाक में अल्लाह के नबी के उम्मत मुस्लिमा पर क्या हकूक़ हैं उसको बताने में सबसे खूबसूरत आयत है। इस पर एक पूरी बुक हमने पढ़ी हुई है तफ़ीमु सुन्ना सीरीज़ में, बेशुमार लेक्चर भी हैं जिसमें हम इत्तबाए सुन्ना और नबी की बात करते हैं। आज इस आयत की रोशनी में आपको मौलाना हाली की एक पोइम के कुछ अशार सुनाऊंगी। उर्दू मुश्किल भी होगी लेकिन जब आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो समझ आएगी, आज की उम्मत मुस्लिमा के ऊपर बिल्कुल फिट है। ए खासे खासाने रसूल वक्ते दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। मेरा ईमान है कि कुरान की महफिलों में दुआएं कबूल होती हैं, जहाँ भी नेकी होती है वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। तो ये दुआ है एक, आप सब सुनने वाले इस वक्त दुआ के साथ आमीन कहिएगा। ए खासे खासाने रुसल वक्ते दुआ है, छाई हुई आलम पे क़यामत की घटा है, बदली हुई दुनिया में ज़माने की हवा है, गर्दिश में मुसलमान हैं फलक कांप रहा है, गैरों की शिकायत नहीं अपनी ही खता है। सच के झूठ ए खत्मे रसुल फ़ख्रे अरब शाने मदीना, ए हामिये कुल रहमते हक जाने मदीना, कायम है तेरे नाम से ईवाने मदीना, अल्लाह की मखलूक में तू सबसे बड़ा है, इस्लाम पे फिर दुश्मने दीन टूट पड़े हैं। ज़रा से इस दर्द को महसूस करिए आप, और ये आज से कितनी पुरानी पोएम है और ऐसे लगता है कि आज के हालात की अक्कासी है। इस्लाम पे फिर दुश्मने दीन टूट पड़े हैं, गारत गरीमान तबाही पे अड़े हैं, झंडे तेरे हर सिमत खुदाई में गड़े हैं, जब चाहा है कुफार का रुख मोड़ दिया है, ए खासे खासाने रुसल वक्ते दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, वो तेरे मुहाजिर तेरे अंसार कहाँ हैं, जो बदरो उहद में थे वो सरदार कहाँ हैं, मक्के में जो थे साथ वो दो चार कहाँ हैं, कुछ देर को फिर वक्त इन्हें मांग रहा है, ए खासा ए खासा ने रुसल वक्ते दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, कुफार के नरगे में है इस्लाम का आलम, जो खास का आलम है वही आम का आलम। यानी आज सारे एक जैसे हुए हैं, आज फ़र्क ही नहीं समझ आ रहा कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं है, हो मिस्र का उर्दन का के हो शाम का आलम, हर साहिब ईमान के लब पर ये सदा है, ए खासा ए खासा ने रुसल वक्ते दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, अगियार की हैं गुम्बदे खिजरा पे नजरें या निगाहें, अगियार की हैं गुम्बदे खजरा पे निगाहें, मसदूद हुई जाती हैं ईमान की राहें, इस्लाम के सीने से निकलने लगी आहें, फारान की चोटी पे बड़ा शोर मचा है, ए खासा ए खासा ने रसूल वक्ते दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, ए क़िबला अव्वल के निगेबां मेरी सुन ले, ए क़िबला अव्वल के निगेबां मेरी सुन ले, ए अर्श पे अल्लाह के मेहमा मेरी सुन ले, ए क़िबला दीन काबा ईमां मेरी सुन ले, जो तेरी रज़ा है वही खालिक की रज़ा है, ए खासा ए खासा ने रसूल वक्ते दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। शुक्र अल्लाह ने नबी को हमेशा की ज़िंदगी नहीं दी। आप सोचिए कि बदर के मैदान में जो आगे इंशाल्लाह अगली सूरत में हम पढ़ने वाले हैं, उस वक़्त जो नबी के इस्तगासे थे इस्तस्तगीसूना, अगर आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद होते तो उनके जिगर के कितने टुकड़े होते, कितने तीर लगते उन पर। आज इस्लाम गिरा पड़ा है और मुसलमान खड़े हैं। मैदान जंग में झंडा गिर जाता था ना तो वो साइड वाले जो भी लोग होते थे वो जी हार जाते थे। काफिरों का झंडा गिरता था तो मुसलमान गालिब होते थे और अपोजिट में दूसरी पार्टी। आज इस्लाम में तो बड़ी इज्जत है लेकिन बस इसका झंडा गिरा हुआ है। तो खुद से एक सवाल करती हूँ मैं भी और आप भी कि आज गिरे हुए इस्लाम के इस झंडे को कौन थामेगा? आप कहते हैं वो सऊदी अरब वाले, वो मक्का वाले, वो मदीना वाले। नहीं, अंदर से एक जवाब दीजिए, बोलिए मैं इंशाल्लाह, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले, मेरी फैमिली। कैसे? इस कुरान को पढ़कर, इसके मुताबिक अमल करके। अल्लाह हम सब के दर्द को कबूल करे और हमें उम्मत मुस्लिमा की इज्जत का सबब बना ले, इस्लाम को हमारी और हमें इस्लाम की इज्जत का जरिया बना ले। आगे रुको नंबर 20 है, 158 से 162, ना फरमानी का नुकसान। ये भी बड़ी खूबसूरत आयत है, अल्लाह के नबी के मुकाम को वाज़े करती है। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। आप कह दीजिए कि लोगो, मैं तुम सब की तरफ इस अल्लाह का भेजा हुआ हूँ जिसकी बादशाही तमाम आसमानों पर और ज़मीन में है। इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। बस अल्लाह पर ईमान लाओ और इसके नबी उम्मी पर, जो कि अल्लाह ताला पर और इसके अहकाम पर ईमान रखते हैं, और इनकी पैरवी करो ताकि तुम राह पर आ जाओ। आमीन। और कौमे मूसा में एक जमात ऐसी भी है जो हक के मुताबिक हिदायत करती है और इसी के मुताबिक इंसाफ भी करती है। ये जुमला भी लिख लें। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया था कि मेरी उम्मत में से भी एक गिरोह हक पे रहेगा। तो आज हक पर बातिल की जंग में घबराइए नहीं, हक वाले बहुत हैं अभी और अल्लाह हक वालों का साथ नहीं छोड़ता। और हमने इनको 12 खानदानों में तकसीम करके सब की अलग अलग जमात मुकर्रर कर दी। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जबकि इनकी कौम ने इनसे पानी मांगा, कि अपनी असा को फलां पत्थर पर मारो, बस फौरन इससे 12 चश्मे फूट निकले। नोट करिए, पत्थर पे असा मारा था फिर पानी निकला था। मुसलमानों को कुछ करना पड़ेगा, फिर अल्लाह की मदद आएगी। हर हर शख्स ने अपने पानी पीने का मौका मालूम कर लिया और हमने इन पर अबर का साया फगन किया और इनको मनोसलवा पहुंचाई। खाओ नफीस चीजों में से जो कि हमने तुमको दी हैं, और उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया लेकिन अपना ही नुकसान करते थे। और जब इनको हुक्म दिया गया कि तुम लोग इस आबादी में जाकर रहो और खाओ इससे जिस जगह तुम रगबत करो, और जुबान से ये कहते जाना कि तौबा है, और झुके झुके दरवाजे में दाखिल होना, हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे। अल्लाह ताला आज हमें भी ये दिन दिखाए। माजी के मुसलमानों से अल्लाह के ये वादे थे। 40 साल के उस तीख के बाद अल्लाह ने एक ऐसी जवान फोर्स तैयार की जिन्होंने यूशे बिन नून की माइयत में बैतुल मक़दस को फतह कर लिया। अल्लाह आज हमारी नस्लों में से ऐसे ही यूशे बिन नून निकाले, और ऐसे ही सलाहुद्दीन अयूबी निकाले, और ऐसे ही उमर फारूक निकाले। आमीन। इसके लिए कुछ काम करने पड़ेंगे, और वो क्या? जो लोग नेक काम करेंगे इनको मजीद बरा और देंगे, यानी अल्लाह ने जवाब भी साथ ही दिया। अपने हर बच्चे को एक रोटी का लुकमा भी तोड़ के खिलाती है ना, और दूध का एक घूंट पिलाती हैं, तो ये दुआ दे के क्या करें कि अल्लाह तुझे उम्मत मुस्लिमा का बड़ा बनाए, तुम्हें अल्लाह वो ईमान की ताकत दे कि 24-25 साल की उम्र में सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मक़दस को फतह कराया। और वो दिन से आज तक दोबारा इंसानियत देख रही है कि वो माएँ किधर हैं जिन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए। सो बदल डाला इन जालिमों ने एक और कलमा जो खिलाफ थे इस कलमे के जिसकी इनसे फरमाइश की गई थी। इस पर हमने इन पर एक आसमानी आफत भेजी इस वजह से कि वो हुक्म को जाया करते थे। तो लिखिए, लाठी हम मारेंगे, चश्मे अल्लाह फोड़ेगा। ये बात बहुत बड़ी हकीकत है। पहला हाथ आपका, वन लिखिए अपने नोट्स में। अब उसके एक साइड पे जीरो लिखें, क्या बना? 10। एक और जीरो डालिए, 100। जीरो बढ़ाते जाएं, 1, 10, 100, 1000, 10,000 से मिलियंस में पहुंच जाएगा। अब जरा से अपने हाथ से उस वन को छुपा लें या गिरा दें तो जीरो। ये पैगाम है। तुम मुसलमानों खड़े तो रहो, आएगी भी एक आयत आगे भी, इस्तकामत से तुम तो खड़े रहो, तुम खड़े रहो, अल्लाह अपनी मदद के जीरो 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 लगाता रहेगा, क्योंकि अल्लाह के पास जितना है ना उसके मुकाबले में वो जो भी आपको दे देगा वो जीरो ही है। तुम खड़े हो, अल्लाह मदद के जीरो लगाकर तुम्हारी ताकत को मिलियंस में बदल देगा। तुम गिर गए तो तो सब मदद अल्लाह की ख़त्म। आज वो ईमान नहीं है जो मदद लाए, फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, आज भी उतर सकते हैं, लेकिन आज का मुसलमान गिरा पड़ा है, अल्लाह उसको उठा दे। ईमान से मतलब एक आयत इस रुकू में 158 आराफ, हिदायत पाने के लिए कुरान और सुन्नतों पर अमल करना होगा और कोई तरीका नहीं है। इस कुरान और सुन्नत के बाहर जिसने हिदायत ढूंढी उसने मुंह की खाई। फेथ इन एक्शन, सुन्नतों को अपनाकर अपनी जिंदगियों को आसान बनाना है, नेमतों के सही इस्तेमाल से इनका हक अदा करना है और नाशुक्रेपन से बचना है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। रुकू नंबर 21, 21, 163 से 171, अहले सब्त के हीले बहाने। ये है वो आयत जिसके ऊपर आप मारूफ तौर पे हम क्या कहते हैं, वो लोग जिनको बंदर बना दिया गया, यानी मछलियों का वाक्या। वसलहुमनिल करियतिल्लती कानत हादिरतल बहर, और आप इन लोगों से इस बस्ती वालों का जो के दरिया के किनारे आबाद थे इस वक्त का हाल पूछिए, जबकि वो हफ्ते के बारे में हद से निकल रहे थे, जबकि इनके हफ्ते के रोज तो इनकी मछलियां जाहिर हो होकर इनके सामने आ रही थी, और जब हफ्ते के दिन ना होता, यानी जब हफ्ते का दिन ना होता तो इनके सामने ना आती थी। हम इनकी इस तरह आजमाइश करते थे इस सबब से कि वो बेहुक्मी किया करते थे, और जबकि इनमें से एक जमात ने यूं कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह बिल्कुल हलाक करने वाला है या इनको सख्त सजा देने वाला है, उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे रब के रूबरू उजर करने के लिए और इसलिए कि शायद वो डर जाए। बस जब वो इसको भूल गए जो इनको समझाया जाता था, तो हमने इन लोगों को तो बचा लिया जो इस बुरी आदत से मना किया करते थे, और इन लोगों को जो कि ज्यादती करते थे एक सख्त अजाब में पकड़ लिया इस वजह से कि वो बेहुक्मी किया करते थे, यानी जिस काम से इनको मना किया गया था इसमें हद से निकल गए, तो हमने इनसे कह दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ। और वो वक्त याद करना चाहिए कि आपके रब ने ये बात बतला दी कि वो इन यहूद पर क़यामत तक ऐसे शख्स को ज़रूर मुसल्लत करता रहेगा जो इनको सज़ाए शदीद की तकलीफ़ पहुंचाता रहेगा। बिलाशुबा आपका रब जल्दी ही सज़ा दे देता है, और बिलाशुबा वो वाकई बड़ी मग़फ़रत और बड़ी रहमत वाला है। और हमने दुनिया में इनकी मुख्तलिफ़ जमातें कर दी, बाज़ इनमें से नेक थे और बाज़ इनमें और तरह के थे, और हम इनको खुशहालियों और बदहालियों से आजमाते रहे शायद कि वो बाज़ आ जाएं। ये है वो आयत के दो आजमाइशें, खुशियों की आजमाइश एक शर की या तकलीफ की। फिर इसके बाद ऐसे लोग इनके जानशीन हुए कि किताब को इनसे हासिल किया, वो इस दुनिया फ़ानी का मालो मता ले लेते हैं। ज़रा सा कान लगाइएगा, ये आज उम्मत मुस्लिमा की तस्वीर पेश कर रही है, यानी दुनिया भी नहीं छोड़ते, जो मिलता है हराम से हलाल से ले लेते हैं और कहते हैं हाँ हाँ हमारी जरूर मगफरत हो जाएगी, वो जी अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। बोलते हैं जुमला, ये आयत 1400 साल पहले से बता रही है कि लोग हराम ना छोड़ें और अल्लाह की रहमतों की उम्मीद रखें तो ये नहीं होगा। हालांकि अगर इनके पास वैसा ही मालो मता आने लगे तो इसको भी ले लेंगे। क्या इनसे इस किताब के इस मजमून के तहत नहीं लिया गया कि अल्लाह की तरफ से बजुज हक बात के और किसी बात की निस्बत ना करें, और उन्होंने इस किताब में जो कुछ था इसको पढ़ लिया, और आखरत वाला घर इन लोगों के लिए बेहतर है जो तकवा रखते हैं, फिर क्या तुम नहीं समझते? और जो लोग किताब के पाबंद हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं, अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल कर ले। हम ऐसे लोगों का जो अपनी इसलाह करें सवाब ज़ाया ना करेंगे, और जो वो वक्त भी काबिले जिक्र है जब हमने पहाड़ को उठाकर साइबान की तरह इनके ऊपर मुअल्लक कर दिया, और इनको यकीन हो गया कि अब इन पर गिरा, और कहा कि जो किताब हमने तुमको दी है इसे मजबूती से थाम लो, खुजू मा तैनाकुम बिकुवा, और याद रखो जो अहकाम इसमें हैं इससे तवक्को है कि तुम मुत्तकी बन जाओगे। तो ये है जी असहाबे सब्त का किस्सा, जिनको हम बंदर वालों का कहते हैं। इस पैगाम में से एक मैसेज निकलता है कि हराम के मवाके का भर जाना अल्लाह की आजमाइश होती है। सारा हफ्ता मछलियां ना आती 6 दिन, और 7वें दिन जिस दिन पकड़नी मना थी तो उबर उबर के आती। कुरान कहता है शुरुआन, अभी पढ़ के आए हैं शुरुआन, सर उठाना, वो बादवानी कश्ती होती है ना, तो उसके ऊपर जो वो एक लंबा सा ऐसे फ्लिप सा लगा था उसको शुरुआ कहते हैं, सर उठाती थी, क्योंकि उनको भी पता था कि हमें आज किसी ने नहीं पकड़ना। तो उलमा कहते हैं कि हराम के मवाके किसी इलाके में किसी जगह किसी बंदे के लिए आसान हो जाए समझ ले कि अल्लाह ने उसको पकड़ लिया। फिर दूसरा किरदार इसमें हमने देखा उन लोगों का जिन्होंने रोका, तीन गिरोह बन गए, एक उन्होंने काम किया, दूसरों ने रोका, तीसरों ने कहा नहीं जी हम क्यों बुरे बने। जब पूछा तुम क्यों कहते, इन्होंने कौन सा बदलना है, तो कहा कि माँ सीरत नीला रबीना। तो लिखिए हमारा काम समझाना, अल्लाह का काम मनवाना, जहाँ भी कोई गलत काम देखे तो आप उसको रोकें, हाथ से, जुबान से, दिल से तो बुरा कहना अतना तरीन ईमान है। और ये जो खुजू मातैनाकुम कुव्वा का जुमला था, उस पे आज मेरे उम्मत मुस्लिमा होने के नाते और आप पर क्या फ़र्ज़ है, कुरान सुन्नत को थाम लें। अल्लाह के नबी ने फरमाया था तरक तो फी कुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, मैं तुम्हारे बीच में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, बस जब तुम इन दोनों को थाम लोगे, इस पे अमल करते रहोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। किताब अल्लाह ही व सुन्नत रसूली ही, अल्लाह की किताब और इसके रसूल की सुन्नत। ये मौता इमाम मालिक में बहुत सारी किताबों में ये हदीस अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। आपका मेरा आज अमल क्या है, दीन में हीले बहाने करने से बचना है, अपने नेक बुजुर्गों पर सिर्फ फख्र नहीं करना बल्कि उन जैसे नेक काम भी करने हैं, और हीले साजी के साथ आज भी उम्मत मुस्लिमा जो गलत काम कर रही है अल्लाह उसको उससे बचा दे। एक जुमला बस लिख लें, मछलियां पकड़ने पे नहीं अल्लाह ने बंदर बनाया था। लोग कहते लो मछलियां ही पकड़ी थी ना, शराब थोड़ी बेची थी, कुछ सूअर का गोश्त थोड़ी बेच रहे थे या खा रहे थे। मछलियां पकड़ने पे नहीं अल्लाह ने बंदर बनाया, हीले पे बनाया, बहाने, जस्टिफिकेशन। बंदा गुनाह करे और डरे अल्लाह बचा लेता है। जब बंदा अपने गुनाह को जस्टिफाई करने लगे, लॉजिक्स देने लगे, वजाहतें पेश करने लगे, फिर अल्लाह कहता है पकड़ो इनको, पीछे कर दो। आगे है जी रुकू 22, 172 से 181, वादायलस्त। अब आपकी और आपके रब की बातें, कई दिन से मुंतजर थे इस आयत के आने का, एक वादा आपके मेरे रब के बीच में। वैज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम, और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से इनकी औलाद को निकाला और इनसे इन्हीं के मुतल्लिक इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, सब ने जवाब दिया क्यों नहीं, हम सब गवाह बनते हैं, ताकि तुम लोग क्यामत के रोज़ यूँ ना कहो कि हम तो इससे महज बेखबर थे, या यूँ कहो कि पहले पहले शिर्क तो हमारे बड़ों ने किया और हम इनके बाद इन्हीं की नस्ल में हुए, सो क्या इन गलत राह वालों के फेल पर तू हमको हलाकत में डाल देगा। हम इसी तरह आयात को साफ साफ बयान करते हैं ताकि वो बाज आ जाएं, और इन लोगों को इस शख्स का हाल पढ़कर सुनाइए कि जिसको हमने अपनी आयतें दी फिर वो इनसे बिल्कुल ही निकल गया। दुआ करे अल्लाह मला तजलना मिन्हु। बेअमल आलिम का हाल है इधर, इल्म लेने के बाद इल्म के तकाजे पूरे ना करने वाले का हाल। जब आयतों से निकला तो क्या हुआ, फिर शैतान इसके पीछे लग गया, सो वो गुमराह लोगों में शामिल हो गया। और अगर हम चाहते तो इसको इन आयतों की बदौलत बुलंद मर्तबा कर देते, लेकिन वो तो दुनिया की तरफ माइल हो गया। दुआ करें कि अल्लाह हमें आलिम व अमल करे, दुनिया की तरफ झुकाव वाला नहीं कि जिससे पैसा और माल और इज्जत ही कमाते रहे और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी करने लगा, बस इसकी हालत कुत्ते की सी हो गई कि अगर तू इस पर हमला करे तब भी वो हांफे, या इसको छोड़ दे तब भी हांफे। यही हालत इन लोगों की है जिन्होंने मरी आयतों को झुठलाया। बस आप इस हाल को बयान कर दीजिए, शायद वो लोग कुछ सोचें। हम सबको भी सोचने की दावत है, और इन लोगों की हालत भी बुरी हालत है जो मरी आयत को झुठलाते हैं और अपना नुकसान करते हैं। जिसको अल्लाह हिदायत करता है बस वही हिदायत पाने वाला होता है, और जिसे वो गुमराह कर दे सो ऐसे ही लोग खसारे में पड़ने वाले हैं। और हमने ऐसे बहुत से जिन और इंसान दोजख के लिए पैदा किए हैं जिनके दिल ऐसे हैं जिनसे नहीं समझते, और जिनकी आंखें ऐसी हैं जिनसे नहीं देखते, और जिनके कान ऐसे हैं जिनसे नहीं सुनते। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम, अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना शामिल करे। ये लोग चौपायों की तरह हैं बल्कि ये इससे भी ज्यादा गुमराह, और यही लोग गाफिल हैं। और अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, बस इन नामों से ही अल्लाह को मासूम किया करो, और ऐसे लोगों से ताल्लुक भी ना रखो जो इसके नामों में कजरवी करते हैं। इन लोगों को इनके किए की जरूर सजा मिलेगी, और हमारी मखलूक में एक जमात ऐसी भी है जो हक के मवाफिक हिदायत करती है और इसके मवाफिक इंसाफ भी करती है। तो इस रुकू में गफलत की बातें हुई, गाफिलोन। गफलत एक ऐसा मुखलक हथियार है जिससे इंसान खुद को ही खुद हलाक कर डालता है, जिसको हमारी जुबान में कहते हैं अपने पाँव खुद कुल्हाड़ी मारना। वादे अलस का इधर तस्करा हुआ। आज की ज़ुबान में कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज बोलूं तो हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली ला इलाहा इल्लल्लाह पे कर दी गई। ये आयत कई सवालों का जवाब है। आपके बच्चे कहते हैं हमारा नॉन मुस्लिम फ्रेंड क्यों मुस्लिम हो, एथियस क्यों मुसलमान हो, क्यों अल्लाह को माने, तो हम सब के दिमाग कह लीजिए के डाटा के अंदर अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दिया। तो मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। आपका मेरा काम है कैसे लोगों तक पहुंचिए जिन्होंने अभी तक अपने अंदर की इस पुकार को नहीं सुना। फेथ इन एक्शन के पॉइंट्स क्या है कि अपने अंदर फितरत की पुकार को सुनना है और अल्लाह तआला के प्यारे नामों की मार्फत हासिल करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे सीरीज मौजूद है, उससे भी फ़ायदा उठाना है इंशाल्लाह। आगे 23 रुकू नंबर 182 से 188, क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यालमून। और जो लोग हमारी आयात को झुटलाते हैं हम इनको बतदरीज गिरफ्त में लिए जा रहे हैं इस तौर पर कि इन्हें खबर भी नहीं होती, और मैं इनको मोहलत देता हूँ। नोट करें, अल्लाह ने अपने लिए मतवाहिद मतकल्लम का सीगा इस्तेमाल किया। इधर बड़ा यूनिक अंदाज है, बहुत कम होता है कुरान में। बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है, क्या इन लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि इनके साथी को जरा भी जुनून नहीं, वो तो सिर्फ एक साफ साफ डराने वाले हैं। अल्लाह के नबी को मजनू कहते थे, कहते थे ही बिकम क्रेजी, एक ही धुन सवार है। आपको भी ये जुमला सुनने को मिलेगा, बस करो ना, वीकेंड पे भी जाना है, संडे पे भी जाना है, सैटरडे भी जाना है, अच्छा ये भी, अच्छा रात में भी, दिन में भी, शी बिकम क्रेजी, ये एक भूत है सवार हो गया, थोड़े दिन में उतर जाएगा। ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं हक पे चलने वालों को। जमे रहिए, अल्लाह आपको इस्तकामत दे, जुबान को खूबसूरत रखिए, घर की जिम्मेदारियां और अच्छी निभाइए, अपनी सुस्तियां दूर करें और अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। कोई घर वाला आपको नहीं रोकेगा इंशाअल्लाह ताला। वो तो सिर्फ एक साफ साफ डराने वाले हैं, और क्या इन लोगों ने गौर नहीं किया आसमान और जमीन के आलम में और दूसरी चीजों में जो अल्लाह ने पैदा की, और इस बात में कि मुमकिन है कि इनकी अजल करीब ही आ पहुंची हो। फिर कुरान के बाद कौन सी बात पर ये लोग ईमान लाएंगे? आपका दिल क्या कहता है? आगे हम पढ़ेंगे फमाज अबाद अल हक इल्ला दलाल। तो ये कुरान आपका मेरा ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये कोई हमारी डिग्री नहीं, एक जमात के बाद अगली जमात में ले जाना नहीं है। ये कुरान आपके मेरे जन्नत के एंट्री टेस्ट का जरिया है। ये रह गया तो क्या करेंगे? नहीं दुनिया में पास हुए, नहीं डॉक्टर बन सके तो कुछ और बन जाएंगे, लेकिन अगर कुरान पढ़कर जन्नत में ना जा सके तो क्या अंजाम है? बहुत डराने वाली बात है। जिसको अल्लाह ताला गुमराह करते इसको कोई राह पर नहीं ला सकता, और अल्लाह ताला इनको गुमराही में भटकते हुए छोड़ देता है। अल्लाह में ना छोड़ना। ये लोग आपसे कयामत के मुतालिक सवाल करते हैं कि इसका वकूअ कब होगा, आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब ही के पास है, इसके वक्त पर इसको सिवाय अल्लाह के कोई जाहिर ना करेगा, वो आसमानों और ज़मीन में बड़ा भारी हादसा होगा, वो तुम पर महज अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे गोया आप इसकी तहकीकात कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म खास अल्लाह ही के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आप फरमा दीजिए कि मैं खुद अपनी ज़ाते खास के लिए किसी नफ़े का इख्तियार नहीं रखता और ना किसी ज़रर का, मगर इतना ही जितना अल्लाह ताला ने चाहा हो, और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो मैं बहुत मुनाफे हासिल कर लेता और कोई नुकसान मुझे ना पहुंचता। मैं तो महज डराने वाला और बशारत देने वाला हूँ इन लोगों को जो ईमान रखते हैं। अब देखिए नबी की आजजी और आपका पुरदर्द होना कितना दिखा। ईमान से मुतल्लिक दो आयात 185 पारा, ज़रा सा रुक रुक के बोलती हूँ ताकि लिख सके। जो किताब से हिदायत नहीं लेते फिर इनको हिदायत आजमाइशों और अजाबों से मिलती है, और अल्लाह ना करे मेरे आपके साथ ऐसा हो। आयत 188 आ रहा, नबी का काम अल्लाह का पैगाम पहुंचाना। फेथ इन एक्शन, कुरान को सिर्फ सवाब के लिए नहीं हिदायत के लिए भी पढ़ना है। रुकू 24 आखिरी रुकू है सूरत का 189 से 206, अल्लाह इंसान का सबसे बड़ा खैर ख्वाह। इसमें कुछ शोहर बीवी के ताल्लुक की भी खूबसूरतियाँ दिखेंगी। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, वो अल्लाह ऐसा है जिसने तुमको एक तने वाहिद से पैदा किया और इसी से इसका जोड़ा बनाया, ताकि वो इस अपने जोड़े से उन्स हासिल करे। फिर जब मियाँ ने बीवी से कुर्बत हासिल की तो इसको हमल रह गया हल्का सा, सो वो इसको लिए हुए चलती फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों मियाँ बीवी अल्लाह से जो इनका मालिक है दुआ करने लगे कि अगर तुमने हमको सही सलामत औलाद दे दी तो हम खूब शुक्र गुजारी करेंगे। बस जब अल्लाह ने दोनों को सही सलामत औलाद दे दी तो अल्लाह की दी हुई चीज़ में वो दोनों अल्लाह के शरीक करार देने लगे। बस अल्लाह पाक है इनके शिर्क से। कैसे शिर्क किया? बच्चे का नाम रखा पीरां दित्ता। रखना क्या था? अल्लाह दित्ता। कोई बच्चा हो ना तो उसका नाम रखिएगा अल्लाह दित्ता। अब जिनको पंजाबी नहीं आती उनको कैसे समझाऊं? दित्ता कहते दिया, अल्लाह ने दिया। और बेटी हुई तो नाम रखिएगा अल्लाह दित्ती। पहले ऐसे ही नाम होते थे, अब तो पता नहीं हमने कौन से फैशनेबल नाम रखे। तो बहरहाल बच्चों के गलत नाम रखना शैतान को उनमें शरीक करना है। क्या ऐसों को शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज़ को पैदा न कर सके और वो खुद ही पैदा किए गए हों, और वो इनको किसी किस्म की मदद नहीं दे सकते और वो खुद भी मदद नहीं कर सकते। और अगर तुम इनको कोई बात बतलाने को पुकारो तो तुम्हारे कहने पर ना चलें, तुम्हारे एतबार से दोनों उम्र बराबर हैं। ख्वाह तुम इनको पुकारो या खामोश रहो, वाकई तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वो भी तुम जैसे ही बंदे हैं। फरिश्तों की बात आ रही है। सो तुम इनको पुकारो, फिर इनको चाहिए कि तुम्हारा कहना पूरा कर दें अगर तुम सच्चे हो। क्या इनके पाँव हैं जिनसे वो चलते हों, या इनके हाथ हैं जिनसे वो किसी चीज़ को थाम सकें, या इनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते हों, या इनके कान हैं जिनसे सुनते हों? आप कह दीजिए, तुम अपने सब शुरका को बुला लो, फिर मेरी ज़रा रिसानी यानी मुझे तकलीफ़ देने की तदबीर करो, फिर मुझको ज़रा मोहलत ना दो। यकीनन मेरा मददगार अल्लाह ताला है जिसने ये किताब नाजिल की है, और वो नेक बंदों की मदद करता है। और तुम जिन लोगों की अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते, और ना वो अपनी मदद कर सकते हैं। कर सकते तो अपनी करते ना पहले। और इनको अगर कोई बात बतलाने को पुकारो तो इसको ना सुने, और इनको आप देखते हैं कि गोया वो आपको देख रहे हैं और वो कुछ भी नहीं देखते। 3D और 5D मूर्तियों की तरफ इशारा है, जिधर से देखो लगता है वो आपको देख रही हैं। आप दरगुजर इख्तियार करें, नेक काम की तालीम दें और जाहिलों से किनारा हो जाएं। और आपको अगर कोई वसवसा शैतान की तरफ से आने लगे तो अल्लाह की पनाह मांग लीजिए, बिलाशुबा वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। यकीनन जो लोग खुदा तरस हैं जब इनको कोई खतरा शैतान की तरफ से आ जाता है तो वो याद में लग जाते हैं, सो यकायक इनकी आंखें खुल जाती हैं। और जो शयातीन के ताबे हैं वो इनको गुमराही में खींच लिए जाते हैं, बस वो बास नहीं आते। और जब आप कोई मौजज़ा इनके सामने जाहिर नहीं करते तो वो लोग कहते हैं कि आप ये मौजज़ा क्यों नहीं लाए? आप कह दीजिए कि मैं इसकी पैरवी करता हूँ जो मुझ पर मेरे रब की तरफ से हुक्म भेजा गया। ये गोया बहुत सी दलीलें हैं तुम्हारे रब की तरफ से, और हिदायत और रहमत है इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। और जब कुरान पढ़ा जाया करे तो इसकी तरफ कान लगा दिया करो और खामोश रहा करो, माशाल्लाह जैसे आप सुनते हैं। अगर मैं पढ़ रही हूँ ना तो आप मुझसे बुलवा रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबके सीने खोल दें। उम्मीद है कि तुम पर रहमत हो, और ऐ शख्स अपने रब की याद किया करो, अपने दिल में आजजी के साथ और खौफ के साथ और जोर की आवाज़ की निस्बत कम आवाज़ के साथ सुबह और शाम, और अहले गफलत में मत हो जाना। यकीनन जो तेरे रब के नज़दीक हैं कौन? फरिश्ते। वो इसकी इबादत से तकबर नहीं करते और इसकी पाकी बयान करते हैं और इसको सजदा करते हैं। यह है जी सूरत कैन पे कुरान पाक का पहला सजदा तिलावत। पसंदीदा है कि इस पे सजदा किया जाए गो के फ़र्ज़ नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किया कभी नहीं किया। बाज़ उलमा कहते हैं जहाँ बैठे हैं हल्का सा सर झुका दें तो भी ये काम हो जाता है। असल मकसद जो इससे लेना है कि अल्लाह के हर हुक्म पे सर झुकाने की आदत हो जाए, समय न वताना। अगर याद कर सकें तो ये दुआ है सजदा तिलावत की, अल्लाहुम्मा अक्तुब ली बिहा इंदक अजरा वदा अन्नी बिहा विज़रा वजल हाली इंदक ज़ुख्रा व तकबल हा मिन्नी कमा तकबल तहा मिन अब्दी का दावूद। ए अल्लाह मेरे लिए सजदे के बदले अपने हाजिर लिख ले, और इसके बदले मेरे गुनाहों का बोझ ख़त्म कर दे, और अपने पास इसे ज़खीरा बना ले, और मुझसे इसी तरह कबूल फरमा जिस तरह तूने अपने बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम से कबूल फरमाया। तिर्मिजी की ये रिवायत है, मुसद्रिक हाकिम में भी है। एक और दुआ भी अक्सर लोग पढ़ते हैं लेकिन उसकी सनद में ज़ोफ़ है थोड़ा सा। तो बहरहाल आप जो भी पढ़ सकें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। सूरत क्या मुकाम पे शुरू हुई थी? इबलीस के सजदा ना करने पे। सूरत पूरी हो रही है इंसान को सजदा करने की रग़बत पे। ये कुरान की सूरतों का शुरू और आखिर में रब्त होता है। ईमान से मुतल्लिक एक ही आयत थी, 203 पैराग। कुरान में अल्लाह ने समझने वालों के लिए हर किस्म की हिदायत रखी है। अब इस पूरे रुकू में इतने खूबसूरत नुक्ते हैं, एक पूरा दावा कोर्स है। दाई दीन, मुबल्लिग, उस्ताद, टीचर, यानी उसको लोगों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, जिसमें से दो तीन जुमले दरगुजर और एराज की दावत दी गई। क्योंकि दरगुजर और एराज हक की दावत को मनाजरे में तब्दील होने से बचाती हैं। बस लोगों का तबलीग का अंदाज ऐसे होता है कि फरीके मुखालिफ से मुनाजरा कर रहे हैं, बहस झगड़े ये वो। अब चूंकि यहाँ वक्त नहीं और जरूरत भी नहीं है, कभी जिंदगी में मौका मिला तो इन आयात की तफसीर सुनिएगा। फिर इस सूरत में आपको बहुत सारे मुतालबे दिखे, ये दिखाइए ये दिखाइए, ये मोजज़े मांगते थे। अल्लाह ने क्यों नहीं दिखाया? जो माँ के पेट से बच्चे को निकाल सकता है वो कोहे सफा में से भी कुछ निकाल देता। तो उसका जवाब ले लीजिए, मोजज़ा दिखाना अल्लाह ताला के लिए इंतहाई आसान था, मगर नतीजे में असल मकसद पीछे रह जाता। अब इमेजिन कीजिए ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे आज के दौर में कोहे सफा फटता और उसमें से टेस्ला गाड़ी निकल आती। अल्लाह के नबी की बात कोई सुनता? वो गाड़ी में भाग रहे होते, रंग देखो, कपड़ा देखो, ये उड़ रही है, इसके परे देखो, ये करो वो करो, पैगाम पीछे रह जाता। तो मोजज़े नहीं मांगने चाहिए। फिर अगली बात यह है कि करामाती चीज़ों में खोने का नाम दीन नहीं। जिसकी करामतें दिखाओ, नबी की करामतें देखना चाहते थे ना कि इनके कहने पे अल्लाह वाला क्या क्या करता है। दीन अल्लाह के कलाम पे तवज्जो देने का काम है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस वक्त कर रहे हैं। सच्चा दीनदार कौन है? इंसान का अल्लाह सुबहाना ताला के साथ गहरा ताल्लुक़ कायम हो जाए उसकी बात सुनकर। आप मुझे इस पे परख लीजिएगा, क्योंकि मैं भी तो आपके इस वक्त दीन के नाम पर ये पढ़ा रही हूँ ना। कौन दीनदार होते हैं? जिसकी बात सुनने के बाद अल्लाह से गहरा ताल्लुक़ होने लगे, उसके दिल में गुदास पैदा हो, वो अल्लाह की याद वाला बन जाए, अल्लाह की अज़मत इसके दिल दिमाग पर इस तरह छा जाए कि वो इसके अंदर तवाज़ो और खौफ की कैफियत पैदा कर दे, अल्लाह तआला का तस्करा करते हुए इसकी आवाज़ पस्त हो जाए और गफलत से निकलकर बेदारी में पहुंच जाए। अगर इसमें कोई एक अलामत भी आपको अपने अंदर दिख रही है तो मुबारक हो, आप दीनदार हैं, अल्लाह आपको बाकी चीज़ों में ले आएगा। तो यहाँ पे ये सूरत पूरी हुई। शुरू में भी फरिश्तों का जिक्र था, आखिर में दोबारा फरिश्तों का तस्करा हुआ। फिर इसमें एक बात आई थी, वामुर बिलुर्फ। अल्लाह के नबी को कहा गया था कि आप इनको वामुर बिलुर्फ उर्फ का हुक्म दीजिए। 119 पे आया था आराफ में। तो इसमें तबलीग के चार आदाब है। उर्फ में क्या क्या आता है? तौहीद, यानी इनको तौहीद की दावत दीजिए, क्योंकि तौहीद आज ही पढ़ लिया है कि जानी पहचानी है, हमारे अपने खमीर में गुंदी हुई है। आखरत, नेकी और अदल, यानी तौहीद, आखरत, नेकी और अदल की तरफ बुलाना ही उर्फ की तरफ बुलाना है। हमारी तबलीग में माफ़ कीजिए ये कम और दूसरे लोगों की बातें ज़्यादा होती हैं। अगर तबलीग में ये चार चीज़ें आ गईं तो इंशाल्लाह कुरान के बाद हक समझ भी आएगा और बातिल से बचेंगे भी। फेथ इन एक्शन, अपनी औलादों को अल्लाह से जोड़ना, शरीके ज़िंदगी के लिए राहत और सुकून का ज़रिया बनना, जाहिलों से नहीं उलझना, कुरान को खामोशी से सुनकर समझना और जज्ब करना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे कुरान की खूबसूरत सूरत पूरी हुई और एक खूबसूरत सूरत शुरू होने लगी है।